नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामाप्रदं देवम् अवधूताश्रमणे आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्ब दिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते हे कृष्ण करुणा सिन्धु
दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ग्रीष्मानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
जय श्री
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री असादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव वृंद के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो कल जो सत्र हुआ था उसमें यह चर्चा हुई थी कि किस तरह से सुदामा जी भगवान को मिल लिया, आलिंगन कर लिया और भगवान उनको घर ले गए, उनकी पूजा की। जिस तरह से हम लोग भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह से भगवान ने अपने भक्त की, सुदामा की, उसी तरह से एकदम ठीक उसी तरह से पूजा की। इतना सब पूजा अच्छा सब स्वीकार करने के बाद सुदामा जी विचार करने लग गए कि ये भगवान श्री कृष्ण तो ब्राह्मणों को अपने इष्ट मानते हैं, तो ये सभी ब्राह्मणों जैसे मुझे भी मेरी भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मुझे पहचान रहे हैं कि मैं उनका पुराना बाल सखा सुदामा हूँ? तो ये संदेह सुदामा जी के हृदय में हो गया। और भगवान तो त्रिकालदर्शी है, सब अंतर्यामी है, परमात्मा रूप से सबके हृदय में है, तो तुरंत समझ गए और तुरंत उन्होंने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और अपने हाथ में रखा और प्रेम से कहने लग गए, कहा कि सुदामा जी क्या आपको हमारे गुरुकुल के दिन याद हैं? हमने बचपन में किस तरह से हमने जीवन व्यतीत किया था, क्या आपको याद है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म हे धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर आप अपने घर चले गए होंगे, तो निश्चित रूप से आपने विवाह किया होगा, क्योंकि आप तो गृहस्थ आश्रम आपने स्वीकार किया होगा, लेकिन मुझे विश्वास है यद्यपि आपने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है लेकिन आपकी गृहस्थ आश्रम में कोई आसक्ति नहीं, ना आपको धन में कोई आसक्ति है, आप पूरी तरह से एकदम एक सन्यासी जैसे ही आप अपना जीवन, जिस तरह से अपने गुरुकुल में जीवन बिताया है, तो आपकी संगति से मुझे पता चला कि आप में धन प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, आपको नेम फेम प्रतिष्ठा की कोई इच्छा नहीं है, ना आपको किसी तरह से संग्रह परिग्रह करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया होगा, क्यों? लोक शिक्षा के लिए, जिस तरह से मैं करता हूँ। सुदामा जी से कह रहे हैं कि जिस तरह से मैं भगवान होते हुए भी लोक में शिक्षा देने के लिए, जगत को सिखाने के लिए सारा कार्य करता हूँ, उसी तरह से आप भी उसी तरह से कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से माया मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, उसी तरह से अब माया आपको भी स्पर्श नहीं कर सकती, अब माया को जीत चुके हैं, फिर भी आप तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी एक प्रश्न पूछते हैं कि जब सुदामा जैसे व्यक्ति को संसार के भोगों की इच्छा नहीं है, विषय सुख की कामना नहीं है, तो ऐसे लोग गृहस्थ आश्रम क्यों स्वीकार करते हैं? प्रश्न होगा, अरे भाई ब्रह्मचारी बनिए, प्रचार कीजिए, सब कीजिए, क्यों आप लोगों को गृहस्थ आश्रम में रहना है? तब इसका उत्तर श्रीपाद श्रीधर स्वामी बात कहते हैं कि लोग शिक्षा देने के लिए ही ये कार्य लोक शिक्षा देने के लिए होता है, ताकि गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं उनको ये पता चले कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि गृहस्थ आश्रम में लोग लेते हैं कि अरे हम तो जाल में हैं, हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे, तो ये संदेह हो जाता है। इसलिए ऐसे महान वैष्णव, ऐसे महान जन, सुदामा जैसे महान लोग ये गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और अपने आचरण के द्वारा लोगों को सिखाते हैं कि इस आश्रम में रहते हुए भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हम जैसे सब गृहस्थों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। जैसे तुकाराम महाराज भी गृहस्थ थे, उनकी पत्नी तो परेशान हो जाती थी, बिल्कुल इसी तरह से कोई सिचुएशन उनके घर पर ही होती थी कि तुकाराम महाराज सुबह सुबह अपना निकल जाते थे और उनकी जो पत्नी थी आवड़ी, उनको ढूंढना पड़ता है कि तुकाराम महाराज किधर है, कौन से पहाड़ पर है, कहाँ भजन कर रहा है। लेकिन वो इतनी दक्ष स्त्री थी, अपने पतिव्रता स्त्री थी, ऐसी स्त्री थी कि उनको बराबर पता चल जाता था कि सुदामा जी कहाँ है, अपने तुकाराम जी कहाँ भजन कर रहे हैं। तो तुकाराम जी को आश्चर्य हो जाता था कि आप कैसे मुझे ढूंढ लेते हो, मैं तो अपने जैसे भगवान मुझे प्रेरित करे उस दिशा में मैं जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, अपना अभंग गाता रहता हूँ, तो तुम मुझे कैसे ढूंढ लेती हो। चलो जिस तरह से आप अपने स्वामी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर ढूंढ चुके हैं, उस तरह से मैं अपने स्वामी को ढूंढती हूँ। तो उस तरह से तो ये लोग गृहस्थ आश्रम में रहकर वास्तव में हम लोगों को शिक्षा दे कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो भगवान कहता है कि हे ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको वो दिन याद आता है कभी जब हम लोग गुरुकुल में रहते थे, कि आपको मेरी याद आती है? डांट मारते हैं भगवान, आपको मेरी याद आती है? सच पूछो तो सुदामा जी, सच पूछो ब्राह्मण देव, कि जो गुरुकुल में जैसे जीव का हित होता है, गुरु के आश्रम में रह के शास्त्र का अध्ययन करना, और उससे जितना जीव का हित होता है उतना और कहीं नहीं होता। गुरु के आश्रम में रह के सारे शास्त्रों का सार जान लेना, उनके द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त करना, इससे जिसने गुरु के आश्रम में थोड़ा समय काट लिया वो निश्चित रूप से संसार से पार हो जाता है। तो वास्तव में हम लोगों का जीवन, भगवान करेंगे हम दोनों का जीवन बहुत धन्य है कि हमने गुरु महाराज सांदीपनि मुनि के आश्रम में हमने अपना जीवन बिताया है। तो भगवान कहता है कि सुदामा जी, तीन प्रकार के गुरु होते हैं मनुष्य के, हर मनुष्य के तीन प्रकार के गुरु होते हैं। एक जो जन्मदाता पिता है वो है प्रथम गुरु, दूसरा इसके बाद जो उपनयन संस्कार आदि करते हैं जो पुरोहित, पुरोहित या कुल गुरु जिन्हें हम कहते हैं, वो द्वितीय गुरु है, और उनका भी उतने ही वो भी पूजनीय है और मेरे ही समान उनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान पुरोहित तो हमारे कुल गुरु होता है, पुरोहित होता है, तो हम भगवान स्वयं यहाँ पर करें कि उनका भी सम्मान करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग वैष्णव समाज में आ जाते हैं तो अक्सर हम लोग हमारे माता पिता द्वारा जो कुल गुरु होते हैं उनका हम लोग तिरस्कार कर लेते हैं, अरे इन लोग चाय पीने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि उनका मेरी तरह सम्मान करना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तिरस्कार तो किसी भी जीव का नहीं करना चाहिए, और जो लोग जो ब्राह्मण है, जो कुल गुरु है, उनका ठीक है, हम लोग उनका फिलोसफी भले स्वीकार नहीं कर रहे, उनका सम्मान तो करना ही चाहिए, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तदनंतर जो भगवत धर्म का जो उपदेश करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति उनको साक्षात मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, ये थर्ड कैटेगरी है। मेरे प्यारे हे सुदामा जी, इतना जान लीजिए कि ऐसे जो वैष्णव जो गुरु है, जो मेरे भागवत धर्म के विषय में जो उपदेश करते हैं, उनको साक्षात मैं ही हूं। तुम्हें और मेरे में कोई अंतर नहीं समझना, वो साक्षात मैं हूं। और अपने ऐसे महान वैष्णव के, ऐसे गुरुजनों के जो हम लोग गृहस्थ, ये गृहस्थ आश्रम के लोग हैं या फिर कोई भी किसी भी आश्रम में, वर्ण आश्रम में, किसी भी वर्ण आश्रम के लोग हैं, यदि ऐसे सदगुरु के, ऐसे गुरु के, वैष्णव गुरु के मार्गदर्शन में यदि उनके उपदेशानुसार उनके मार्गदर्शन भक्ति करता है, तो वो किसी भी आश्रम में वो सहज पार हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग गाय के खुर को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं, उसी तरह से हम लोग भगवान के महान वैष्णव का आश्रय ग्रहण करने से, उनका केवल उनके आदेशों का पालन करने से, उनका केवल आदेशों का पालन करने मात्र से हम लोग उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे और इस संसार को ऐसे पार कर लेंगे। इतनी आसानी से, कितना आसान उपाय रख दिया गया महाजनों के उपदेशानुसार, उनकी इच्छानुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, ये है सबसे शॉर्टकट। सहजता से भगवान के धाम में चले जाएंगे। फिर भगवान इनके बारे इनके ऐसे महान वैष्णव के गुणों का वर्णन करते कहते हैं कि प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में परमात्मा रूप से रहता हूँ, लेकिन एक चीज जान लो कि मैं गृहस्थ धर्म में जो गृहस्थ लोग पंच महायज्ञ आदि से मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, ब्रह्मचारी लोग जो वेद अध्ययन करते हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, वानप्रस्थी लोग जो तपस्या करते हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, और सन्यासी लोग का जो उपरत हो जाते हैं, सारे संसार से ऊपर रहते हैं, तो इनका जो ये त्याग है उससे मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, जितना संतुष्ट मैं ऐसे महान वैष्णव की सेवा करने से होता हूँ। अब प्रश्न है कि ऐसे महान वैष्णव को दर्शन, पहले बोल दर्शन कैसे प्राप्त हो। ऐसे जो भगवान के व्यक्ति है उस इस देखिए इस संसार में भगवान के प्रेमी भक्त खूब घुमा करते हैं, इस संसार में सर्वत्र भगवान के प्रेमी भक्त है, हमारी दृष्टि नहीं होती देखने की, तो हम उनको कैसे देखें। तो कथा उपनिषद में एक श्लोक है और इसमें उपाय दिया गया है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो ना वेधा या ना बहुधा श्रुते न यम एवं सवृणते तेन लभ्य तस ऐसा आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। परमात्मा जो हमारे हृदय में है चैत्य गुरु के रूप में वो वही गुरु का रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट है। जो चैत्य गुरु है वही शरीर धारण करके हमारे सामने गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में प्रेजेंट है। लेकिन प्रश्न हो सकता है कि किन लोगों के सामने वो प्रकट होते हैं। परमात्मा हृदय में है, वो गुरु का रूप धारण करके उस जीव के सामने प्रकट होता है, लेकिन किन लोगों के सामने? उन्हीं लोगों के सामने प्रकट होते हैं जो लोग भगवत प्राप्ति के लिए रोते हैं, उनके हृदय में लालसा रहती है भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने की, जिनके हृदय में लालसा होती है, जो लालायित रहता है कब मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा, कब मैं भगवत तत्व को कब समझूंगा, ये जब हृदय में जो लालसा होती है ना, ये परमात्मा हमारे हृदय में रहता है, वो देखते हैं अरे इसकी तो लालसा बढ़ रही है, और हम लोग सोचते मुझे मार्गदर्शन कौन करेगा, कैसे मुझे कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण में प्रेम कैसे प्राप्त होगा, इस संसार में रहते हुए इन जो भौतिक लोगों का संग करके मुझे कृष्ण मिलने वाले हैं नहीं, मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण की प्राप्ति करें, ये जब दृढ़ लालसा हृदय में जब होती है ना, उस समय परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं और वो देखते हैं, और वही उस समय गुरु का रूप धारण करके या साधु का रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट होते हैं, और भगवान द्वारा भेजे गए रहते हैं कि हम लोगों के हृदय में लालसा है तो उसको पूर्ण कर ले भगवान। फिर उनके उनके मार्गदर्शन में जो भक्ति की जाती है, उनके उद्देश्यानुसार उनके आदेशों का पालन करते हैं जो भक्ति की जाती है, उससे संसार ऐसे बाहर हो जाता है। लेकिन वो लालसा होनी बहुत आवश्यक है, रोज भगवान के सामने प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम में हम ये प्रार्थना रखनी चाहिए कि भगवान मुझे आपके चरण कमलों की प्राप्ति करनी है, मुझे आपके शुद्ध वैष्णव का संग करना है, ये दोनों प्रार्थनाएं हमारे रोज के नियम में होनी चाहिए। भगवान के सामने प्रणाम करने से मांगना चाहिए, प्रभु आपके प्रेमी भक्तों का संगति मुझे दीजिए, और मुझे आपके चरण कमलों में शुद्ध प्रेम चाहिए प्रभु, केवल आप भी कुछ व्यवस्था कर सकते, तब वो भेजेंगे अपने दूत को। गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्र में प्रमाण है, शास्त्रों द्वारा हमें यह पता चलता है कि गुरु कृष्ण का ही स्वरूप है, इसलिए तो हम गाते हैं जन्मे जन्मे प्रभु से ही, हम लोग गाते हैं रोज ना गुरु आरती में जन्मे जन्मे प्रभु से ही। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो गुरु और शिष्य का जो संबंध है ये टेम्पररी संबंध है ना, इटरनल संबंध है। आज हम कथा परिषद में से इस जो गुड़ रहस्य है इसको आज समझने का हम प्रयास करेंगे। एक प्रश्न उठ सकता है कि कैसे ये इटरनल संबंध है, गुरु और शिष्य का जो संबंध है कैसे इटरनल है। अरे भाई, हम देखते हैं कि गुरु कभी कभी गुरु शिष्य के पहले शरीर छोड़ देता है, फिर कभी ऐसा भी होता है कि शिष्य गुरु के पहले शरीर छोड़ देता है, तो ये संबंध इटरनल कैसे है। गुरु तत्व और गुरु सेवक तत्व ये दोनों इटरनल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है। ये भारी रूप से सांसारिक रूप से देखने को हो सकता है कि अरे इनका ये शरीर छूट गया और ये शरीर छोड़ के चले गए, फिर शिष्य तो यही है, गुरु चलेगा, फिर या शिष्य चला गया गुरु है तो शिष्य का क्या होगा, उसका अगला जन्म होगा क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में कैसे होता है, ये गुरु शिष्य का संबंध कैसे मेंटेन करता है। तो भगवान की शक्ति योग माया, जो योग माया है उनकी, योग माया की जो योग माया जो है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसको मेंटेन करने का काम उनका है। मेंटेन करने का जो काम है गुरु और शिष्य के संबंध को, वो काम योग माया का है। जैसे भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो तो जो गुरु और सदगुरु होते हैं वो तो भगवान के धाम से आए भगवान के धाम चले जाते हैं, लेकिन यदि इस संसार में शिष्य को स्वीकार किया है कि ये मेरा शिष्य है और उसको किसी कारण से उसको रिजेक्ट नहीं किया है, मतलब स्वीकार करके रखा है, तो जब वो मानते हैं कि मेरा पुत्र है, पुत्री है, मेरा शिष्य है, कि मानते हैं, तब उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने शिष्य को भगवान के धाम में, भगवान के चरण कमल में ले जाए। तब प्रश्न उठेगा, अगर गुरु चले जाते तब क्या होगा शिष्य का। तो गुरु भगवान के धाम में जाते हैं और भगवान के धाम से, नित्य धाम से, गोलोक वृंदावन से, वो अपने उस सदशिष्य पर, कौन सदशिष्य कौन है, जो अपने गुरुदेव के इच्छानुसार चल रहा है, गुरुदेव के आदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसे सदशिष्य पर गुरु ऊपर से दृष्टि रखते हैं, आध्यात्मिक जगत से दृष्टि रखते हैं, और आध्यात्मिक जगत से दृष्टि रखकर उसकी सहायता करते हैं। कैसे सहायता करता है, कई प्रकार से सहायता करता है, उसको हृदय में प्रेरित करते हैं कि किसी तरह से कृष्ण भक्ति में वो दृढ़ हो जाए, ये फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, यदि मान लीजिए कि यदि उस शिष्य का शरीर छूट जाता है, शिष्य दूसरा शरीर धारण कर लेता है, तब उस समय उसको फिर से भक्ति में लाने के लिए गुरु किसी आसपास के, जो आसपास में कोई अगर साधु है, उसके माध्यम से उस शिष्य को एनकरेजमेंट देते हैं। उसके गुरु जो पूर्व जन्म से गुरु, वही भगवान के धाम से कोई आसपास में कोई साधु, उसके माध्यम से उसको शिक्षा देते हैं और उसको एनकरेजमेंट करते हैं कि भाई आप फिर से भक्ति स्टार्ट करो, यदि उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई तो। फिर यदि स्थिति एकदम ऐसी है कि शिष्य नहीं समझता है, लेकिन सदा शिष्य उसने गुरुदेव की सेवा की है, ऐसे समय में अगर कुछ आसपास में कुछ नहीं हो रहा, मतलब आसपास के कोई व्यक्ति है नहीं जिससे वो, या फिर वो नहीं समझ रहा है, तो गुरु साक्षात भगवान, यहाँ पे इस कथा उपनिषद में कहता है कि गुरु साक्षात उसके सामने प्रकट होकर उसको मार्गदर्शन करेंगे। साक्षात भगवान के धाम से आएंगे और उसके सामने प्रकट हो जाएंगे अपने ट्रांसेंडेंटल बॉडी से, उसको मार्गदर्शन करेंगे कि उठ भगवान का भजन कर। तो ये जो संबंध है गुरु शिष्य का, ये इंटरनल संबंध है और ये योग माया द्वारा स्थापित है, योग माया इसको मेंटेन करती है। ये गुड़ रहस्य है, ये हमेशा इसको स्मरण रखना चाहिए, इससे हमारे भजन में हमारा विकास होगा। गुरु वैष्णव में हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी, क्योंकि भगवान की व्यवस्था है ये, हम लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान द्वारा व्यवस्था की गई है। तो सुदामा जी से इस तरह से भगवान बात करते हुए गुरु तत्व को समझाते हुए भगवान सुदामा जी से पूछते हैं कि जिस समय हम लोग, सुदामा जी आपको याद है कि हम लोग एक बार हमारे गुरु माता ने हम लोगों को कहा था वन से जंगल से लकड़ी लेकर आना, और उस समय हम दोनों वन में गए थे लकड़ी लाने के लिए, और वहाँ पे अकस्मात प्रलयकालीन बारिश हो गई, वहाँ पर इतनी घमासान बारिश हो गई, इतना घमासान बारिश हुई कि वहाँ पर कहाँ धरती और कहाँ ऊंच नीच का कुछ पता नहीं चल रहा था, सब जगह पे पानी हो गया था, सब आंधी तूफान, पेड़ गिरे थे, ये हो रहा था, सब जगह आंधी तूफान हो रहा था, और उस बीच में हम दोनों फंसे हुए थे, आपको याद है ना वो रात सुदामा जी? तो भगवान कह रहे वो बारिश नहीं थी, अकस्मात बेमौसम बरसात थी, वो भगवान कह रहे बेमौसम बरसात थी, और हम दोनों को तो ऐसा हो रहा था कि कहीं प्रलय तो नहीं हो रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे तो प्रलय क्या होता है सब जानते थे, आजकल के स्टूडेंट्स जैसे नहीं थे, उनको कुछ नहीं मालूम है आजकल के स्टूडेंट्स को, लेकिन वो गुरुकुल में पढ़े बच्चे थे, तो उनको मालूम है प्रलय क्या होता है, तो समझ रहे थे कि गुरु महाराज कभी भी प्रलय का वर्णन करता है, क्या प्रलय तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से सुदामा और कृष्ण इस तरह से जंगल में बात करते थे, और तो उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए वो पूरी रात बिताई थी। तो सुदामा जी उन भगवान का हाथ पकड़ के बैठे, ये सब चर्चा उनके हाथ, सुदामा भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ के बैठा था, और फिर जो लास्ट जो बचपन में जो हाथ पकड़ने वाली घटना उसको सुना रहे थे। सुदामा जी याद है ना, हम दोनों हाथ पकड़ पकड़ के डरे हुए थे, और हम लोगों ने अपना पूरी रात बिताई थी। जैसे सांदीपनी मुनि को पता चला कि सुदामा और कृष्ण दोनों फंसे हुए हैं, तो अपने कुछ शिष्यों के साथ एकदम शीघ्र वो लोग वहां पर हम लोगों को दोनों को ढूंढते हुए आए थे, और जब गुरु महाराज ने हम दोनों को देखा तो उनका हृदय दया और करुणा से भर गया, और उन्होंने हमें देखते हुए कहा कि आश्चर्य है पुत्र, आश्चर्य है कि तुम लोगों ने हमारे लिए जितना कष्ट उठाया है उतना शायद ही कोई उठा सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने गुरु के लिए इस तरह से कष्ट उठाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश जान करके हमें प्रचार करना है, बहुत कम लोग होते हैं जो 70 साल की आयु में सारे विश्व भर में भ्रमण करते हैं और कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं। तो सांदीपनि मुनि कह रहे कि कितनी आश्चर्य की बात है, सभी प्राणियों को अपना शरीर प्रिय होता है, लेकिन परंतु आप लोगों को हमारे लिए, हमारी सेवा करने के लिए, अपने गुरु माता और गुरु महाराज की सेवा करने के लिए आप लोगों ने अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। कोई होता तो इस तरह स्थिति देखकर कोई लौट जाता था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। वो लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे तो सब लकड़ी एक साथ इकट्ठा करके वो इस तरह भटक रहे थे। तो गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सदा शिष्य को क्या करना चाहिए? गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सदा शिष्य का कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर तक गुरु की सेवा में अर्पण करें। शरीर तक, मैं आपको घटना सुनाता हूं, मुझे फकीर मोहन टुकड़े घटना सुनाई थी, भक्ति सिद्धांत सरद ठाकुर की घटना शायद किसी किताबों में नहीं होगी। एक गृहस्थ थे, तो वो गृहस्थ काफी धनवान थे, तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरद ठाकुर ने उन लोगों को बुलाया रखा। भक्ति सिद्धांत सागर को तो अपने शिष्यों पर विश्वास था कि ये दोनों मेरे ओबीडियंट स्टूडेंट हैं, मेरे आगे का पालन करने वाले हैं। लेकिन उनके अन्य शिष्यों को शिक्षा देने के लिए भक्ति सिद्धांत सागर ने उन लोगों को बुलाया रखा कि तुम्हारी जितनी सारी प्रॉपर्टी है ना वो मेरे नाम पर लिख दो, तुम्हारी जितनी सारी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पर ऑफिशियली लिख दो। तो उन्होंने लिख दिया और उनकी पत्नी को कहा कि तुम्हें जो भी पैसा चाहिए रोज मेरे से आके ले लेना, और जितना पैसा मैं दूंगा उसको मुझे हिसाब किताब चाहिए। उन लोगों ने वही किया, उनकी पत्नी ने हूँ क्या चू नहीं किया, उन्होंने एक इंच भी या किसी तरह से कोई कोई उनके उनको अपने गुरुदेव पर इतना पूर्ण विश्वास था, इतने समर्पित शिष्य थे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे सांदीपनि मुनि वर्णन करता है, उसे इतने समर्पित थे, उन्होंने शरीर तक अपना अपने गुरु महाराज को दे दिया। अपना सबसे शरीर के दो प्राण होते हैं, एक तो सांस जो लेते हैं और वो धन, दोनों प्राण अपने गुरुदेव के शरीर में लगा दिए। और भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर कुछ समय तक ऐसा सब करते रहे, और उसके बाद जब सारे सारे शिष्य समूह को जो उनको तिरस्कार किसी कारण से करते थे, जब उनको सबको संदेश मिल गया, तब गुरु महाराज ने दोबारा एग्रीमेंट करा के सारा सब कुछ वापस दे दिया, कहा कि ये मेरा प्रसाद समझ कर तुम्हें इसको स्वीकार करना। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते कि हम लोग गुरुकुल में थे, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम लोग के साथ घटित हुई, बहुत सारी घटनाएं। तो इस भगवान कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है सुदामा जी, गुरु महाराज की कृपा से ही आज हम लोग जो कुछ भी है सब गुरु महाराज की कृपा से है। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं जो कुछ भी हूं मैं अपने गुरु महाराज की कृपा से है। तो ये भाव होना चाहिए हम लोगों में भी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं हम लोग वो गुरु और वैष्णव की कृपा से ही कार्य कर रहे हैं। अगर कुछ बोलने की शक्ति रखते हैं, कुछ बोलने का सामग्र प्रचार कर लेते, थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर लेते, तो सारा जो श्रेय है वो हमें अपने गुरुजनों को देना चाहिए, स्वीकार करके ऊपर दे दो, डायरेक्ट ऑफर कर दे। तो सुदामा जी अब भगवान की तरफ देखते हुए सुदामा जी समझ गए अब कि चलो ये समझ रहा है कि मैं उनका बाल सका हूँ। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में कितना बड़ा सौभाग्य था, कितना बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में था कि आप देवताओं के आराध्य देव हैं, परमात्मा रूप से सब जगह व्याप्त है, और हमें आपके साथ गुरुकुल में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, कितना बड़ा मेरा सौभाग्य। और मुझे क्या चाहिए? सुदामा जी रास्ते में जब आ रहे थे तो सुदामा जी रास्ते में अपने आप को पूछ रहे थे कि मोहित मैं क्या करने जा रहा हूँ कृष्ण के पास, धन मांगने जा रहा हूँ या उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। तो सुदामा जी सोचे धन तो कैसे कमाया जा सकता है, धन तो आ जाएगा, भगवान के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो ना, ये इससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये सुदामा जी विचार कर निश्चय करके आए थे कि पत्नी के घर से तो निकले थे बहाना बना के कि पत्नी भेज दी कि जाओ धन कुछ लेकर आ जाना किसी तरह से, लेकिन सुदामा जी रास्ते में निश्चय करने के नहीं, इसे धन देने की मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे भगवान के दर्शन की कामना है, मुझे भगवान का दर्शन चाहिए। तो वेदों में जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चतुर्विध पुरुषार्थ के जो मूल स्त्रोत्र है वो तो साक्षात आपका शरीर है प्रभु, और वही आप वेदाध्यान के बहाने आप मनुष्य की जैसे लीला कर रहे हैं। तो सुदामा जी इस तरह से उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। कभी कभी कुछ मायावादी लोग, एक बार मैं एक मायावादी के सत्संग में बैठा था, बहुत पुरानी बात है, 15 साल पहले की बात होगी, तो उसकी कथा में बैठा तो वो कह रहे थे कि सुदामा कृष्ण ने गुरुकुल में सांदीपनि मुनि के आश्रम में जो ट्रेनिंग ली थी उसी के ट्रेनिंग के बल पर उन्होंने भगवदगीता ऐसा प्रवचन किया। मैंने कभी कभी मुझे बात याद आती है, मुझे हंसी फूटती है कि ये लोग ये मायावादी लोग भगवान को क्या समझेंगे। भगवान 6 दिन के थे, पुतना का वध किया तब भी सुप्रीम पर्सनालिटी पॉलिट है, परिपूर्ण भगवान है, उनके हर एक लीला से 6 दिन के थे, उसके बाद शकटासुर अघासुर इतने सारे लोगों का वध किया, तो छोटे से बालक हो या 125 साल के भगवत गीता अर्जुन को सुना रहे वो हो, सब समय में भगवान पूर्ण है। कुछ जगहों पे कोर्ट केस चल रही है, 2 वैष्णव पंथों में कोर्ट केस चलती है कि जो आपके भागवत के जो कृष्ण है वो महाभारत ही कृष्ण से अलग है। कोर्ट केस है कि वो दोनों वैष्णव पंथ में वाद विवाद है। अरे हमारे महाभारत कृष्ण कितने महान हैं, भगवत गीता का प्रवचन करते हैं, और आपके द्वारका आपके ब्रज के कृष्ण दूसरों की पत्नियों के साथ रासलीला करते हैं, उनके कपड़े चुराते हैं, ये कोई भगवान है? तो इस तरह की जो थर्ड क्लास की बातें हैं, इन लोगों को कभी इन लोगों की संगति में कभी नहीं रहना चाहिए। भगवान सब तरह से परिपूर्ण है, उनका हर एक जन्म कर्म चमे दिव्यम, एक एक कार्य उनका लीला है, एक एक हर एक, हमारे जैसे भगवान नहीं है, भगवान का जन्म कर्म सब कुछ दिव्य है उनका। तो ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक और संतों के एकमात्र आश्रय भगवान, बहुत देर तक इस तरह से सुदामा जी से बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करते करते फिर भगवान मुस्कुरा कर सुदामा जी से पूछने लगते हैं। तो सुदामा जी, भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं कि आप अपने घर से, आप इतने दूर से आए हो, आप मेरे घर में आए हो, तो खाली हाथ तो अपने मित्र के पास आएंगे नहीं, कितना दोस्त एटिकेट आपको मालूम है। तो भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी कहते हैं कि कुछ नहीं, थोड़ा सा छोटा सा, थोड़ा सा कुछ है, लेकिन वो आपके लायक नहीं है, आपके लायक नहीं है। तो सुदामा जी देख लिए थे सारा ऐश्वर्य सब कुछ देख लिए थे, उनके सामने सुदामा जी सोच रहे थे मेरे इस चार मुट्ठी चूड़े की क्या कीमत है? भीख मांगकर लाए हुए चार मुट्ठी चूड़ी क्या कीमत भाई? द्वारका में क्या कीमत है? द्वारका में क्या इतना ऑपुलेंस देख लिया उन्होंने, क्यों लेकिन मेरे इस चूड़े की क्या कीमत है? तो भगवान कहते हैं, मेरे प्रेमी भक्त, यदि थोड़ी सी भी वस्तु मुझे, मेरे प्रेमी भक्त यदि मुझे थोड़ी सी भी वस्तु मुझे भेंट कर दे, तो वो मेरे लिए तो बहुत हो जाती है, बहुत। और उसको सिर्फ मैं लेकिन यदि कोई अभक्त है, वो यदि कोई मुझे भेंट अर्पण करता है, तो मैं उसको कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन यदि मेरा प्रेमी भक्त है, यदि वो मुझे कुछ दे दे, तो उसको मैं तुरंत ले लेता हूँ, तुरंत, एक क्षण का विचार नहीं करता हूँ मैं। जैसे मेरे प्रेमी भक्त ने घंटी बजाने से मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि इतना प्रेम से बनाया हुआ रहता है, इतने प्रेम से बनाया रहता है कि वो भगवान वेट नहीं करते, घंटी तो बजाते रहे उसके पहले भगवान खा लेते हैं, क्योंकि उसमें भक्त का प्रेम होता है। तो उसको आस्वादन करते के लिए भगवान को परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद मिलता है भगवान को। अपने भक्तों के हाथों से बनाया हुआ भोजन जब वो स्वीकार करते हैं, तो उनको परम आनंद मिलता है। तो कभी कभी कुछ लोगों की ये रहता है कि कुछ लोग नए लोग रहते हैं, उनकी विश्वास रहता है कि भगवान स्वीकार करता है। तो हम लोग भक्तों को बोलते हैं कोई बात नहीं, ऐसी घंटी बजा लीजिए, शुरुआत के दिन याद कीजिए, आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए, भगवान स्वीकार कर ले। मान लीजिए किसी को विश्वास नहीं कि इसमें भगवान है, नहीं है किसी में विश्वास, लेकिन फिर भी वैष्णव की बात को मानकर सामने भगवान के भोग रखता है और घंटी बजा देता है, खाइए, उसको विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी उसके भी भोग को भगवान खा लेते हैं। और करते क्या है, धीरे 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 ये उसकी सेवा को स्वीकार करते जाते हैं, और उसके हृदय में तो खुद ही बैठे हुए, तो उसके फेथ को इंक्रीज करते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं उसके जीवन में कि उसको विश्वास हो जाता है, अरे भाई ये तो है। उनको कुछ ऐसी घटना कर देते हैं कि भाई इनके अलावा मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई था ही नहीं, बस यही थे, तो वो समझ जाते हैं, और फिर जो सेवा स्टार्ट होती है वो प्रेम पूर्वक स्टार्ट होती है। तो भगवान जानते तो करेगा प्रेम मुझसे, थोड़ा सा इंजेक्शन दे देते हैं। तो भगवान कहते हैं जो मुझे फूल पुष्प पत्ता पानी थोड़ी सी वस्तु मुझे समर्पित कर देता है, तो मैं उसको स्वीकार कर लेता तुरंत। अरे फूल भी खा लेते हैं आप, है ना, इतना प्रेम से चढ़ा तो खाना ही पड़ेगा फूल भी। विश्वनाथ चक्र ठाकुर पूछते हैं प्रश्न, फूल भी खाते हैं? हाँ फूल भी खाते हैं। एक बार तो सुदामा जी से भगवान कहते हैं कि पोटली में क्या है, पोटली तो देख लेते भगवान, पोटली में क्या है, थोड़ा सा चूड़ा, थोड़ा सा चूड़ा है। तो विश्वनाथ ठाकुर एक और उदाहरण कहते हैं कि यदि भोग बना है लेकिन स्वादिष्ट नहीं बना है, प्रेम से बना है लेकिन स्वादिष्ट नहीं बना है, तब भी क्या भगवान स्वीकार करेंगे? बिल्कुल। किसी ने एक प्रश्न पूछा था, बहुत पहले की बात है, किसी ने प्रश्न पूछा था मैं कि कोई भक्त है उसको खाना बनाने नहीं आता है, जब भी कुछ बनाता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो प्रेम से ऑफर करता है, वो भी खा लेंगे? बोले निश्चित खाएंगे भाई, तुम भले उसको बाद में नहीं खा सकोगे लेकिन भगवान तुम्हारे द्वारा बनाया तो निश्चित खा लेंगे, क्योंकि तुम इतना प्रेम से बना रहे, भले जल जाए तो खा लेंगे, प्रेम से बनाया ना तो भगवान स्वीकार करते खाते हैं। हम लोगों की सेवा को स्वीकार करने के लिए तो आलसा वगैरह के रूप में प्रकट है। हम जानते हैं हम दरिद्र लोग हैं, हमारी इंद्रिया दूषित है, सब कुछ दूषित है, तो हम लोगों की सेवा को स्वीकार करने के लिए भगवान आर्चर वगैरह के रूप में प्रकट है और हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। दुर्योधन ने एक बार क्या किया, जब भगवान शांति दूत बनकर आए थे तो दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग का निमंत्रण दे दिया, बोला आइए कृष्ण, वासुदेव कृष्ण आइए, हमारे घर पे 56 भोग बनाया है, आपको 56 भोग बहुत अच्छा लगता है हमने सुना है, तो आज हमने आपके लिए 56 भोग की व्यवस्था की, आइए हमारे घर पे आइए। तो भगवान कहे नहीं दुर्योधन, तुम भोग तो अच्छा बनाया हो, स्वादिष्ट भी होगा, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, इसमें मैं नहीं आ सकता, तुम मुझे प्रेम से नहीं बुला रहे, मैं तो वही जा रहा हूँ विदुर रानी के पास जा रहा हूँ, विदुर जी ने भी मुझे घर के सेम टाइम में दोनों ने आमंत्रण किया था, दुर्योधन ने भी किया था, विदुर जी ने आमंत्रण, विदुर जी के पास तो बिना आमंत्रण के गए थे, आमंत्रण नहीं किया था, लेकिन बिना आमंत्रण के विदुर जी के पास गए थे और वहां पर केले के छिलके खा रहे थे, दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ दिया और वहां पर विदुर जी के घर जाकर केले के छिलके खा रहे थे। विदुर जी की पत्नी को विश्वास ही नहीं हुआ कि समस्त ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा और शिव जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण मेरे घर पर आए हैं और मुझे उनको कुछ खिलाना है अपने हाथों से, तो वो केले के छिलके निकाल रहे थे, केले नीचे डाल रहे थे, छिलका भगवान को दे रहे थे, भगवान वो खा रहे थे, और विदुर जी बोले तो प्रभु क्या कर रहे हैं, बोले डोंट डिस्टर्ब, ये हम दोनों का आपस का मामला भाई, हम खा रहे हैं, हम क्या करते, भगवान खा रहे थे वास्तव में, क्योंकि प्रेम से ऑफर किया गया था। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कि सुदामा जी दीजिए दे नहीं रहे थे, छुपा रहे थे, ऐसे ऐसे करके छुपा रहे थे, तो भगवान तुरंत गए और छपट करके हाथों से ले लिया, और भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान तो उनके हृदय की बात जानते थे, ये मेरे जब जैसे चूड़ा उन्होंने अपने हाथ में ले लिया तो भगवान को तो परम आनंद की प्राप्ति हो गई, भगवान तो एकदम एक्सेसी में चले गए और विचार करने लगे, गंभीरता से विचार करने लगे कि ये कि तो एक तो एक तो ये ब्राह्मण है, मेरा भक्त है, दूसरा इसने कभी भी धन की कामना से मेरी भक्ति नहीं की है, गारंटेड मेरी भक्ति कभी नहीं की है, और इस समय यदि यहां पर आया है तो बस अपनी पत्नी पर दया करते हुए हमारे पास आया है, अब मैं इसको ऐसी संपत्ति दूंगा जिसके लिए देवता भी लालायित रहता है, कर्दम मुनि के पास जो धन है, कर्दम मुनि तपस्वी थे, कर्दम मुनि तपस्या करते थे, उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था, और जब उनकी जब उनका विवाह जब हुआ, उनका उनकी पत्नी एक मनु महाराज की पुत्री थी, हजारों दिन की दास दासियां थी, ऐसे देहूती जब कर्दम जी की पत्नी बनी तो वो भी एकदम साध्वी जैसे रहती थी, एकदम जब उनको होश हुआ, जब कर्दम मुनि को होश हुआ, कह रहे मेरी ये तो मनु जी की पत्नी, मेरी शादी हुई इसके साथ, कर्दम जी इतने अपने तपस्या में अपने भजन में इतने व्यस्त थे कि उनको वो भूल ही गए थे कि उनका विवाह हुआ है, और जब होश में आए तो देखा कि देहूति इतनी सुंदर मनु महाराज की स्त्री और इस तरह से हो गई है। तब उन्होंने कहा कि मांगो देहूति, क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे ना संतान चाहिए आपसे। आपने कहा था जब मेरे पिताजी आपको मुझे देने के लिए आए थे, मेरा दान करने, कन्या दान करने के लिए आए थे, तब आपने कहा था कि आप मुझे संतान देंगे। तब कर्दम जी ने कहा ठीक है, संतान चाहिए। तो कर्दम जी ने अपने शक्ति से एक ऐसा शहर क्रिएट किया, हवा आकाश में एक ऐसा शहर क्रिएट किया जिसमें हजारों 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 दासियां थी, सब कुछ था। और कहा कि वहां पर बिंदु सरोवर था, वहां पर उनके पास में भगवान उनकी भक्ति को देखकर जो रोए थे, भगवान विष्णु भगवान श्री हरि रोए थे, उसी से बिंदु सरोवर बना था। तो वो जो सरोवर था उसमें उन्होंने कहा कि देहूति जाओ उसमें स्नान कर लो। और जैसी देहूति उसमें डुबकी मारकर बाहर आई तो देहूति पूर्णतः स्वस्थ हो गई थी, और वह हजारों दासियों के सेवा में थी। उसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक वो जो शहर जो बनाया था उसमें खूब भोग भोगे। तो हमारे आचार्य गण लिखते हैं वो जो भोग उनके पास थे, वो भोग तो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। वो भोग साधारण भोग नहीं थे, वो भगवान का कृपा प्रसाद था, भगवान का कृपा प्रसाद था। वो भोग भौतिक नहीं थे, यदि भी ऐसा लग रहा था कि कर्दम एक साधारण मनुष्य के भांति भोग भोग रहे, लेकिन वो जो भोग थे वो भगवान का कृपा प्रसाद था। उसी तरह से भगवान यहाँ पर सुदामा जी को बोल रहे कि मैं इनको ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं ने कभी देखी भी नहीं होगी। तो ये भी भगवान का कृपा प्रसाद है। सुदामा जी को जो भोग मिला वो भगवान का कृपा प्रसाद है। कि दो विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं कि दो तरह के निष्काम भक्त होते हैं, दो तरह के। एक निष्काम भक्त वो होता है जिनको किसी भी समय में, कभी किसी भी अवस्था में, चाहे कितनी भी सिचुएशन आ जाए, उनको धन नहीं चाहिए। निष्काम भक्त कृष्ण के चरण कमलों के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे निष्काम भक्तों में जड़ भरत जी आते हैं, जिनको कोई कामना ही नहीं है, जड़ है, संसार से जड़ है, इसलिए उनको जड़ भरत कहा जाता है। जड़ इतना अपने आप को संसार से इतना अलिप्त रखे थे कि उनको किसी चीज की कामना नहीं है। एक दूसरी तरह के निष्काम भक्त होते हैं जिनको आप सब कुछ दे दीजिए, सब यूज भी कर, सामान्य मनुष्य जैसे उसको इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन उसमें लव मात्र भी आसक्त नहीं है, जैसे प्रहलाद महाराज। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर ये तो उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि अब तक सुदामा जी जो थे वो प्रथम कैटेगरी में आते थे, लेकिन अब अपनी पत्नी के रिक्वेस्ट करने पर मेरे पास मांगा नहीं है सुदामा जी ने, बस वो पत्नी की बात मानकर घर से अपने शरीर को लेकर चल पड़े हैं, उनको ये सब चीज की कामना बिल्कुल नहीं है। तो कोई पूछेगा जिनकी पत्नी की कामना होगी? नहीं, इनकी पत्नी ने इनको इसलिए भेजा था ताकि ये तो निष्काम भाव से सेवा कर रही थी अपने पति की, अपने प्रति, अपने उसको स्वसुख के लिए धन नहीं चाहिए था, उसको धन चाहिए था अपने पति की सेवा करने के लिए धन चाहिए था, तो वो भी निष्काम ही होगी। तो भगवान ने देखा ये भी निष्काम स्त्री है, तो इन दोनों को ऐसी संपत्ति दूंगा, मेरे कृपा प्रसाद, ऐसा कृपा प्रसाद दूंगा कि ब्रह्मा जी तक टेंशन ना ले। ऐसा कहकर भगवान ने वो पोटली की गांठ खोलना चालू कर दिया, जो हमने कल बांधी थी ना वो खोलना चालू कर दिया, और खोलना चालू कर दिया, और उसमें से भगवान ने जो चूड़ा देखा, कहा सुदामा अरे इतना तो सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। तो सुदामा भगवान ने चूड़े में प्रथम मुट्ठी डाली और खाली दूसरी मुट्ठी डालने ही वाले थे, रुक्मिणी ने आके भगवान को रोक दिया। क्या बातचीत करेंगे शाम को, बात करेंगे। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राधे।